ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदं ऋतदिवसमृतं विभदभगतं रासमालयं मुहुरोराशिकभुविभावुकः नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टभयेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवद्योत्तमश्लोक्य भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। एते चंसाकला पुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियार्व्याकुलं लोकं हृदयान्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखसमनस्तं नमामि हरिं परम्। श्रीमद्भागवतम से पढ़ रहा है षष्ठ स्कंद पहले अध्याय श्लोक संख्या 30। अजमिल के जीवन का इतिहास। निशम्यं म्रियमानस्य मुकतो हरिकीर्तनम् भर्तुर्नाम महाराज पर्षदा सहसापतन। निशम्यं सुनकर म्रियमानस्यां मरण आसन व्यक्ति के मुकता मुख से हरिकीर्तनम् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन। भर्तृनाम अपने स्वामी का पवित्र नाम। महाराज हे राजा पर्षदा विष्णु के दूत सहसा तुरंत अपतन आ गए। अनुवाद तत्पर्य शिल ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद। हे राजन, जब विष्णु दूत ने मरण आसान अजमिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में नीर अपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। तत्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि हरि कीर्तनम निशम्यापतन कथम भूतस्य भर्तृनाम ब्रुवतः। विष्णु के दूत इसलिए आए क्योंकि अजमिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि वो क्यों उच्चारण कर रहा है। नारायण नाम का उच्चारण करते समय अजमिल वास्तव में अपने पुत्र के विषय में सोच रहा था, किंतु विष्णु दूतों ने अजमिल को भगवान नाम का कीर्तन करते सुना तो वे तुरंत अजमिल की रक्षा हेतु आ गए। हरि कीर्तन वस्तुतः भगवान के नाम रूप लीला तथा गुणों के गान के लिए होता है, किंतु अजमिल ने भगवान के रूप गुण या साज सामग्री का गुणगान नहीं किया था। उसने तो पवित्र नाम का चरण मात्र किया था, फिर भी वो उच्चारण उसके सारे पाप कर्मों को दो दाने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही विष्णु दूतों ने अपने स्वामी के नाम का कीर्तन होते सुना, वे जत से आ गए। इस संदर्भ में शिला विजयध्वज तीर्थ की टिप्पणी है, अनेना पुत्र स्नेहम अंतरेना प्रचिना दस्तवालात उद्भुताया भक्त्या भगवान नाम संकीर्तन कृतम इति जायते ज्ञायते। अजमील ने नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन किया क्योंकि वो अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक आसक्त था। फिर भी अपने विगत सौभाग्य के कारण, क्योंकि उसने नारायण की भक्ति की थी, उसने पूर्ण भक्ति में तथा निरअपराध भाव से पवित्र नाम का कीर्तन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददति सापरन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणारघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिककान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्कञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणामनि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रीतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। निशम्या म्रियमानस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराजा पर्षदा सहसापतम। हे राजन, जब विष्णुदूत ने मरणासन अजमील के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में नीर अपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। तो यहां पर इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये अजमील के बारे में बताते थे। अजमील एक ब्राह्मण थे, और जैसे यहाँ पर प्रभुपद भी उल्लेख किया है तत्पर्य में, श्री नारायण की सेवक करते थे, भक्ति मार्ग में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश में वे एक वैश्य के प्रति आकृष्ट हुए थे, और इस कारण से भी ये अपने भक्ति ब्राह्मण कार्य कुल सब छोड़ दिया और वैश्य के साथ रहते थे। और उनके 10 पुत्र हुए, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा करते थे, इसलिए परम दयालु भगवान उनकी भी बुद्धि दिया, जिससे वे अपना 10 पुत्र का नाम रकता नारायण, जिससे ये वैष्णव के ब्राह्मण के जो आगे जानता है, आगे जाना छत्य भक्ति मार्ग में, तो जब गृहस्थ आश्रम में है और पुत्र बच्चे पैदा होता है तो उसी समय भगवान के नाम देता है और भगवान के भक्त के नाम देता है नामकरण संस्कार के समय, और स्त्री पुत्र के लिए बच्चे के लिए तो रानिया शक्ति लक्ष्मी देवी और वैष्णवी के नाम उनको देता है। ऐसे करते हुए एक प्रकार के बच्चे के लिए रक्षा बन जाता है, एक प्रकार के कवच होता है। जब नाम देता है भगवान के नाम देता है और जब पुकारता है पिताजी माताजी और दूसरे जो परिवार में है, जब बच्चे को पुकारता है तो ऐसे करते हुए भगवान का नाम उच्चारण करता है। तो उन्होंने ऐसे किया है तो इसलिए बार बार भगवान का नाम उच्चारण किए थे, लेकिन वास्तव में बच्चे को बुलाते थे, पुत्र को बुलाते थे। और कभी बहुत बार ऐसा होता है जब जैसे यहाँ पर दसों के बच्चे थे तो सबके प्रति स्नेह है, प्रेम है। जब वैष्णव है तो भगवान केंद्र में है तो वास्तव में ये शुद्ध प्रेम है, लेकिन जब शुद्ध वैष्णव नहीं है या तो वहाँ पर के प्रेम ये भौतिक प्रेम है, भौतिक स्नेह है, लेकिन स्नेह तो है, ये स्वाभाविक है। जब बच्चे पैदा होता है तो स्नेह पूर्वक बच्चे को बुलाते थे नारायण शब्द भगवान का नाम उच्चारण करते हुए। और लेकिन उसी समय जब वैश्य के साथ है किसी प्रकार से पैसे तो कमाना है, तो उचित रूप से उन्होंने ना ही पैसे कमाया था, तो अपना तो कार्य छोड़ दिया, ब्राह्मण के कार्य छोड़ दिया और किसी प्रकार से पैसे तो मिल गया इधर उधर से, और ऐसे गृहस्था अपना गृह परिवार पुत्र को पालन पोषण करते थे। तो अंत के समय आ गया और भगवान का नाम का उच्चारण किए। जब विष्णु दूत आए थे, मतलब पहले तो जमदूत आए थे, और क्योंकि जमदूत तो यमराज के दूत है, सेवक है, और वे उन्होंने देखा था कि ये पापी है, बहुत पाप किया है, इसलिए यमराज के पास ले आना है और उनको दंड देना है। जब अच्छा कार्य करता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरा काम करता है तो अच्छा फल नहीं मिलता है, संभव नहीं है। और जब जैसे कोई भौतिक जगत भूमंडल में है, जब देवतलोक की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहा है, तो देवलोक के वहाँ पर स्वर्ग लोग में ऊपर के लोग में पहुँच सकता है। जब सत्वगुण में है, जब सत्विक भाव में है, सत्विक व्यवहार से काम करता है, और जब मिश्रित गुण में है, सत्वगुण लेकिन रजोगुण गुण में भी है, तो फिर से यहाँ पर जन्म ले सकता है भूमंडल में, पृथ्वी पे। लेकिन जो पापी है, जो गलत काम कर रहा है, शास्त्र के विरोध में, तो ये नीचे के योनि में, पशु पक्षी के योनि में उनको जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कावट भी है और पशु तो देशों में कहा जाता है, और यहाँ पर हमको भी मालूम है, देखता है, जो जैसे अगर कोई कुत्ते के समान खाता है तो वैसे ही कुत्ते से के समान बन जाता है। और विशेष करके पश्चिम देश में हमने देखा है जो कुत्ते रखता है अपने घर में भी रखता है, कभी कभी बिस्तर में भी आ जाते हैं और पुरुष के साथ सोता है और अच्छा तरह से उसको खिलाता है और बाहर जाके तो घुमाता है कुत्ते रस्सी लेकर भी, और उनकी वास्तव में सेवा कर रहा है। लेकिन वास्तव में हमको भगवान की सेवा करना है। लेकिन अगर कोई कुत्ते की सेवा कर रहा है तो कुत्ते के समान बन जाता है और अगले जन्म भी कुत्ते के शरीर में प्रवेश करने की संभावना है। और जो दूसरे को कष्ट देता है, जैसे पंचम स्कंद में उल्लेख किया है, इसमें अगर कोई दूसरे को मार जाता है, दूसरे के संपत्ति की चोरी करता है, तो इसका फल तो भोगना है और नरक लोक में भी जाना है। तो यहां पर कहां पर जाएगा जीव शरीर छोड़ने के बाद? ये देवता लोग दिखता है और ये इसका व्यवस्था कर रहा है। तो यमराज भी जो पापी लोग जो है उनका देखभाल करता है और ये निर्णय करता है कि और देखता है कि उसने क्या किया है, क्या पाप किया है, इसके अनुसार अलग अलग नरक लोक में उनको भेजता है। तो यमदूत वहां पर आ गया क्योंकि बहुत सारे पाप उन्होंने किया था जब वैश्य के साथ रहते थे, चोरी करते थे, दूसरे को बहुत कष्ट देते थे, इसलिए यमदूत आए थे उनको यमराज के पास ले जाने के लिए। और वहां पर यमराज के पास भी जाने के रास्ता जो है बहुत दुखमय है, बहुत कष्ट मिलता है वहां पर जाने के लिए। और इसके बाद जब यमराज के पास तो पहुंचता है तो निर्णय लेता है, उनके वहां पर सेवक भी है और देखता है क्या किया है, क्या पाप किया है, इसके अनुसार अलग अलग नरक लोक में बेचता है और वहां पर बहुत कष्ट मिलता है और दुखी रहता है हर समय काफी लंबे समय के लिए। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले से तो भगवान की आराधना की थी, भक्ति में भक्ति मार्ग में थे और इसके फलस्वरूप भगवान का नाम दशम पुत्र को दिया नारायण, और इसलिए बार बार नारायण का नाम उच्चारण करते हुए ये सुन के विष्णु दूत भी वहां पर आ गए सहसा तुरंत यहां पर आए थे। और उस समय मना किया यमदूता को उनको ले जाने के लिए। इसके बाद आगे भी तो सुन लेंगे कि क्या बात हुई, क्योंकि एक बार नाम भगवान का नाम उच्चारण करते हुए सब जो पाप जिन्होंने किया है भी इससे मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान का नाम उच्चारण करते हुए इससे भी मुक्त हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्प तो ये कुछ भोगना तो पड़ेगा, इसलिए हम देखता है कि कभी कभी भक्त लोग भी कष्ट मिलता है। तो क्योंकि पहले से भी कुछ गलत काम किया है, लेकिन जब भगवान के शरण में आ जाता है तो बहुत कम दुख तो भोगना है। तो मतलब यह है कि लगभग इससे विमुक्त हो जाता है, पाप कर्म से दुष्क्रिया से विमुक्त हो जाता है। और यह भी है कि इस भौतिक जगह में रहते हुए तो समस्या तो आ जाता है, इसलिए हमेशा विनम्र भाव में रहना है। जैसे महाप्रभु कहता है त्रिनारपि सुनिच्छिना तरोरपि सहिष्णुना, क्योंकि इस भौतिक जगत में क्लेश तो होता है, सबसे पहले जन्म तो लेता है, उसी समय तो बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए, माँ के लिए भी मुश्किल है, और इसके बाद अलग अलग बीमारियां आ जाती है, और उसके बाद वृद्धावस्था में जब पहुंचता है अच्छे तरह से ना देख सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, तो परम तो अच्छे तरह से नहीं रह सकता है वृद्धावस्था में, तो मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद शरीर छोड़ना है, ये भी मुश्किल है और ये भी दुखमय है। लेकिन जब भगवान के शरण में है तब जो इस भौतिक जगत के जो क्लेश जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि जब भगवान की सेवा में लीन है आनंद का अनुभव कर सकता है, परम आनंद का अनुभव कर सकता है, आध्यात्मिक आनंद अनुभव कर सकता है। इस भौतिक जगत में भी कुछ आनंद है लेकिन भौतिक आनंद है, भौतिक सुख है, ये तुच्छ है वास्तव में। लेकिन जब आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है तब आध्यात्मिक सुख अनुभव कर सकता है, और जब ये अनुभव कर सकता है ये भौतिक दुख सहन कर सकता है, भौतिक क्लेश जो होता है इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक शरीर से मन से अपना शरीर मन से जो होता है ये सहन कर सकते, और दूसरे क्लेश है आदि भौतिक आदि दैविक, जिसे जब ज़्यादा गर्मी है तो मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा ठंड है और भूकंप होता है इत्यादि, तो कुछ इससे इस क्लेश से दुख भी मिलता है भक्त को भी, लेकिन ये सहन कर सकता है क्योंकि भगवान की सेवा में लीन है। और कलयुग में विशेष करके नाम ये इसमें लीन होने चाहिए, नाम कीर्तन, जैसे यहाँ पर भी उल्लेख किया है हरि कीर्तनम, क्योंकि ये युग धारणा है, चार युग है, तो सत्य युग में तो ध्यान के माध्यम से आगे जा सकते भक्ति मार्ग में, लेकिन उसी समय भी सत्य युग में भी भगवान का नाम उच्चारण करते थे, अलग अलग श्लोक भगवान की पूजा में उच्चारण करते थे। और इसके बाद त्रेता युग विशाल ऐश्वर्यपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान करते हुए आगे जा सकते हैं, और वहाँ पर भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। जैसे अगर यज्ञ अनुष्ठान होता है सबसे पहले इष्टदेव की पूजा करना है, गुरुदेव और इष्टदेव की पूजा करना है, इसके बाद अग्निदेव की पूजा होता है, इसके बाद आहुति अर्पण करता है, तो वहाँ पर भी भगवान का नाम उच्चारण करता है ब्राह्मण वैष्णव जो भगवान को मानता है, वेद शास्त्र के अनुसार चलता है। और द्वापर युग विधि है जिससे आगे जा सकता है लोग, यह है ऐश्वर्य पूर्ण ठाकुर जी की सेवा, तो ठाकुर जी की सेवा में भी तो अलग अलग श्लोक उच्चारण करता है भगवान की गुणगान में, तो हरि कीर्तन होता है, नाम कीर्तन होता है। और कलयुग में तो प्रधान है नाम कीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कौला नास्त्यव 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 गत्यरण्यता, वास्तव में एक ही रास्ता है कलयुग में, नाम कीर्तन है। लेकिन फिर भी तो शुरुआत में तो साधु संग में रहना है, और विशेष करके गुरुजान जो आगे है भक्ति मार्ग में उनके संग में रहना है, उनके आदेश अनुसार चलना है भक्ति मार्ग में। और गुरुजान भी बताता है कि वास्तव में हमको ठाकुर जी की सेवा करना है, जब साधक के शरीर में है शुरुआत में है भक्ति मार्ग में, तो ठाकुर जी की सेवा भी महत्वपूर्ण है। ये भी हमारे पूर्वाचार्य ने उल्लेख किया है कि दो मार्ग है, दो मार्ग में वास्तव में, एक है पंचरात्रि की विधि, दूसरे भगवत विधि। पंचरात्रि की विधि यह है शास्त्र के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना है विधिवत पूर्वक, और भगवत विधि नाम कीर्तन है, भगवत श्रवण है, नाम कीर्तन है। तो दोनों हमको अपना जीवन में अपनाना है, तो तो ठाकुर जी की सेवा भी करना ये भी जरूरत है, महत्वपूर्ण है, पंचमात्म ये महत्वपूर्ण अंग है, इसमें भी है एक। और इसके बारे भी तो प्रतिदिन, इसलिए श्री प्रभुपाद ने स्थापित किया प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है, भगवत कथा होना चाहिए सुबह, इसके बाद रात को भी भगवत गीता। और प्रभुपाद भी कहते थे रोज रोज कम से कम एक बार एक घंटा शास्त्र पढ़ना है, जैसे प्रभुपाद प्रस्तुत किया है ये भक्ति रस अमृत सिंधु उपदेश अमृत इत्यादि चैतन्य चतुरमृत, ये भी पढ़ना है, रोज रोज पढ़ना है। तो क्योंकि बिना श्रवण करते हुए, जैसे यहाँ पर भी उल्लेख किया तात्पर्य में हरि कीर्तन, मतलब इसे क्या है, भगवान के नाम तो है नाम कीर्तन, लेकिन इसके बाद रूप गुण और लीला का श्रवण भी करना है। सिर्फ नाम उच्चारण करते हुए उत्तम अवस्था पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि रूप के बारे में, भगवान के सुंदर रूप के बारे में श्रवण करना है, उनका दर्शन लेना है। जैसे मंदिर में अगर दर्शन नहीं लेता है, भगवान के सुंदर रूप के श्रवण नहीं करता है नाम के समय, उनका स्मरण नहीं कर सकता है भगवान के, संभव नहीं है। अगर इस भौतिक जग में तो रहता है तो अलग अलग तो मूर्ति देखता है, अलग अलग चीज देखता है, लेकिन अगर भगवान नहीं देखता है, भगवान के बारे में नहीं सुनता है, उनके सुंदर रूप कस्तूरी तिलकम ललात पातले वक्ष तारे कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति नम कर तले वेणु कंकनम सर्वांग हरि चंदनम सलितम कंते चमुक्तावली गोप स्त्री परिवेश तो विजयते गोपाल चोरमानी। उनके सुंदर रूप के बारे में अगर श्रवण नहीं करता है, और तो भगवान भी अकेले नहीं है, उनके साथ गोपियां नंद बाबा यशोदा माँ सुदाम श्रीदाम उनके मित्र है, उनका स्मरण भी करना है, उनके सुंदर रूप सुशोभित है और उनके लालत पे कस्तूरी तिलक है, कस्तूरी से बने हुए तिलक है, इसमें चंदन भी है और इस कस्तूरी चंदन इसमें मिला के इसके बाद लगाता है एक बूंद, ये उनका तिलक है यहाँ पर। उसके बाद भाई जयंती माला पहनते हैं और इसके बाद सुंदर वहाँ पर एक उनके यहाँ पर चौकर है, बाजू बांध है, कंकन यहाँ पर है, नूपुर है और सुंदर भी मोतीमाला है। तो इसका श्रवण करते हुए, ऐसे करते हुए भगवान का सुंदर रूप और उनके स्मरण कर सकते हैं, उनकी गुण का श्रवण करना है। भगवान के अनंत गुण है, लेकिन विशेष करके 64 गुण उल्लेख किया है भक्ति रस अमृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ने, और 4 गुण सिर्फ कृष्ण के पास है जो नारायण के पास नहीं है। यह है वेणु मधुरिया, उनके हाथ में वेणु है मुरलीधर, इसलिए उनका नाम है। और जब वेणु बजाता है क्या होता है, तो इसका श्रवण करना है। और उनके रूप मधुरिया तो है, इसके बाद लीला मधुरिया उनके सुंदर लीलाएं का श्रवण करना है, और प्रेम मधुरिया उनके साथ जो उनके नित्य शरीर सिर परिकार उनके संबंध जो होता है प्रेम संबंध, इसका श्रवण करना है। जब यह श्रवण करता है रोज प्रतिदिन, तब कभी कभी नाम उच्चारण करते समय उनका स्मरण कर सकता है, उनके रूप उनके गुण उनके लीलाएं शुरुआत में, और जो आगे है निरंतर उनका स्मरण कर सकता है। तो हमको देखना है कि हम धीरे धीरे आगे जा सकता है भक्ति मार्ग में, जिससे हम ज्यादा समय भगवान का स्मरण कर सकता है और दूसरी चीज भूल जाता है, अंत में वास्तव में सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ भगवान का सुंदर रूप गुण उनके परिकार का स्मरण करना है, उनके लीलाएं का स्मरण करना है। इसलिए प्रभुपाद भी कहते थे कम से कम 16 माला जप करना है, और कम से कम तो रोज रोज सुबह और शाम को भगवत श्रवण करना है, और पढ़ना भी है रोज रोज, इसके बाद सेवा भी करना है। जब सेवा भावना ही है, जब सेवा नहीं करता है तो वास्तव में उसी समय भी नाम कीर्तन अच्छे तरह से नहीं होता है, उत्तम अवस्था पर नहीं पहुंच सकता है। प्रभुपाद भी कहते थे जब जप करता है मतलब इसका क्या अर्थ है, तो भगवान के तो स्वरूप तो है, हरे श्रीमती रानी है, हरे श्री कृष्ण माना कृष्ण हलादा स्वरूपिणी अतो हरे त्यानैव श्री राधा परिकीर्ति था, हरे इसका आद दिया गया है गोपाल गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकार जो कृष्ण का मन का हरण करती है, कृष्ण के लड़िनी शक्ति है। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ही है आनंद एक सुख स्वामी श्याम कमल लोचना गोकुल नंद नंद नंदन कृष्ण एरियते, कृष्ण का अर्थ है यह है आनंद एक सुख स्वामी। अगर सुख आनंद अनुभव कर सकता है तो कृष्ण का स्मरण करना है, तो कृष्ण का स्मरण करना है, उनके सुंदर रूप है श्याम रंग श्याम सुंदर श्याम सुंदर नाम गोपियां के सबसे प्रिय नाम है, कमल लोचन उनके सुंदर कमल पुष्प कमल दल के समान है उनके आंखों, और इसके बाद गोकुल के वासियों का आनंद देता है जब प्रेम संबंध है व्यवहार में आदान प्रदान होता है, तो नंद नंदन उनका नाम है, नंद महाराज के पुत्र है लेकिन सबके स्रोत है। तो प्रतिदिन श्रवण करते हुए अच्छा तरह से नाम कीर्तन करते हुए तो संभावना है कि अंत के समय जब शरीर छोड़ना है जो अंतिम परीक्षा है तब भगवान का स्मरण कर सकता है, तब उनके धाम में पहुंच सकता है। तो इसलिए जो भी कुछ कर रहे हैं अभी हमको देखता है देखना है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण कर सकते हैं, वास्तव में निरंतर उनका स्मरण करना है, लेकिन शुरुआत में तो संभव नहीं है जब इस जगत में है और अलग अलग सेवाएं हैं और जैसे वन आश्रम के अनुसार भी अलग अलग विधि है और कि हमको कुछ करना है वन आश्रम के अनुसार तो सेवा करना है, तो हमेशा भगवान का स्मरण करना मुश्किल है शुरुआत में। इसलिए जब भगवान का स्मरण नहीं कर सकते तो भगवान का नाम लेना है, इसलिए कहा जाता है कि जैसे पूजा के समय या रसोई में तो भगवान भोग बनाने के समय भी भगवान का नाम लेना है, उच्चारण करना है या भगवत श्रवण करना है, हर समय हमको प्रयास करना, प्रसाद पाते हुए भी बीच में भगवान का नाम लेना है, महामंत्र उच्चारण करना है, या सोते हुए भी भगवान का नाम बीच में अगर जब कभी कभी जग जाता है रात को बाथरूम जाना है तो उसी समय फिर से भगवान का नाम लेना है, भगवान का स्मरण करना है, तो हमको प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा निरंतर भगवान का स्मरण करना है, भगवान का नाम लेना है, सेवा भाव में रहना है, सेवा करना है प्रेम से स्नेह से दिल से सब कुछ करना है, तब संभव है कि अंत के समय भगवान हमको ले जाता है अपने धाम में उनकी कृपा से, तो हमको प्रयास करना है। लेकिन यहाँ पर तो अजमेल के इसमें उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि परम दया भगवान परम दयालु है और अगर कुछ भी थोड़ा सा सेवा अगर किसी ने किया है भगवान तो इसका याद हमेशा करता है कि उसने मेरे को थोड़ा सा सेवा किया है, इसलिए उनकी सहायता करेंगे। तो उन्होंने कुछ सेवा तो किया था, ब्राह्मण थे भगवान की सेवा करते थे इसलिए, तो लेकिन पतन हो गया तो ब्राह्मण कुल से गिर गया, ब्राह्मण अवस्था से गिर गया, गलत काम किया, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से तो दशम पुत्र का नाम दिया है नारायण, इसका फलस्वरूप अलग अलग समय रोज रोज प्रतिदिन बहुत बार क्योंकि छोटे थे बच्चे उनका नाम उच्चारण करते थे, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे जो है उनके में ज्यादा तो प्रेम होता है, इसमें हमको भी मालूम है और देखा है कि किसी के परिवार में जब सबसे छोटा है तो उनको थोड़ा सा सबसे पहले तो बड़े तो जो पहले होता है बच्चों को भी प्रेम से तो आदान प्रदान तो मतलब सेवा होता है स्नेह पूर्ण, लेकिन जब ये बड़े हो जाता है फिर से पैदा होता है बच्चा तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता है सबसे छोटे बच्चे को। तो सब दूसरे उनके बच्चे बड़े हो जाते थे, बड़े हो गया तो उसी समय ज़्यादा प्रेम उनके प्रति था और ज़्यादा समय उनके नाम को चरण करते थे, उनको बुलाते थे इधर आओ नारायण इधर आओ ये करो पानी ले आओ ये करो वो करो। और तो ऐसे कर तो भगवान का नाम उच्चारण करते थे और इसके फलस्वरूप तो अंत के समय विष्णुदूत आए थे और ये बच गया यमराज जाने के लिए उनके पास जाने के लिए और नरक लोग जाने के लिए क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण करते थे। लेकिन तुरंत भगवान के पास नहीं गए क्योंकि गलत काम किया था इसलिए तो बच गया। इसके बाद तो उन्होंने तो अनुभव किया है भी कि मैंने गलत काम किया है फिर से मुझे भजन करना है तो इसके बाद बद्री के आश्रम की ओर चले गए थे और वहाँ पर भी भजन किया और भजन करते करते फिर से इसके बाद तो जब शुद्ध हो गया था उनके चित्त भगवान की कृपा से और भजन करते हुए तो फिर से विमुक्त हो गया था ये उनके पाप कर्मों से और इसके बाद धाम में प्रवेश किया। तो हमको प्रयास करना इसके बाद भगवान की कृपा मिलता है, भगवान की कृपा जब मिलता है तब आगे जा सकता है। लेकिन तो तुरंत भगवान की असीम कृपा और जिससे हम अपना स्वरूप अनुभव कर सकते तुरंत नहीं मिलता है, पहले थोड़ा सा कृपा मिलता है जिससे हम भक्ति मार्ग में आ जाता है जिससे हम आगे जा सकता है। तो अब प्रयास करते करते और कृपा मिलता है जिससे हम और आगे जा सकता है। लेकिन इसके बाद हमको फिर से और प्रयास करना है जिससे हम उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है और भगवान का स्वरूप अनुभव कर सकता है, अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है। यह अवस्था है सिद्ध अवस्था, स्वरूपगत स्वरूप सिद्धि। तो तब शरीर छोड़ के भगवान के पास जा सकता है। और ये भी एक और बात है कि तो ये अजमेर वैकुंठ के भक्त है तो वैकुंठ भाव है और दूसरा है कृष्ण लोक के भाव जो है ये मधुर्य भाव है विशेष करके गोलोक में। तो अगर गोलोक जाना है तो मधुर्य में आप भाव में प्रवेश करना है तो एक है ऐश्वर्य पूर्ण मार्ग है और दूसरा है मधुर्य पूर्ण मार्ग है। तो अगर वैकुंठ लोक में जाना है तो ऐश्वर्य पूर्ण जब सेवा करते हैं वहाँ पर जा सकता है जैसे नारायण के भक्त है रामचंद्र के भक्त हो इत्यादि। और लेकिन अगर ब्रज में प्रवेश करना है तो ब्रज भाव में राग मार्ग में मधुर्य मार्ग में प्रवेश करना है। और ये रूप गोस्वामी भी उन्होंने उल्लेख किया है भक्ति रसामृत सिंधु में तो सबसे पहले तो सदन भजन करना है सदन भक्ति। ये भी विभाजित है दो भाग में, एक वैदी सदन भक्ति है और दूसरा है रघुनुगा सनन भक्ति। तो जो वैकुंठ लोग जाना चाहता है तो वैदी मार्ग में वैदी सनन भक्ति के अनुसार चलता है तो वहाँ पर प्रवेश कर सकता है। और जो द्वारका में भी जाना चाहता है तो वहाँ पर भी वैदी भक्ति के अनुसार तो वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर ब्रज में प्रवेश करना है तो राग मार्ग में प्रवेश करना है, रघुनुग भक्ति में प्रवेश करना है। लेकिन वहाँ पर भी विधि के अनुसार चलना है विशेष करके शुरुआत में तो वैदिक भक्ति के अनुसार चलना है। सुबह उठ के स्नान करते हुए शुद्ध वस्त्र पहनते हुए भगवान की के मंदिर जाना है या घर पे ठाकुर जी की सेवा करना है मंगल आरती, इसके बाद जप तो करना है भगवत श्रवण करना है अलग अलग सेवा करना है वर्णाश्रम के अनुसार अलग अलग कर्तव्य है। ये भी करना है, लेकिन इसके बाद तो इस भाव से संबंध ज्ञान में रहना चाहिए, मैं कृष्णा के दास हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ अपितु आत्मा हूँ। इसलिए ये भी कहा जाता है नाम कीर्तन करते हुए संबंध ज्ञान के साथ नाम कीर्तन करना है, मैं शरीर नहीं हूँ अपितु आत्मा हूँ, भगवान के दास हूँ जिनके सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा करते हुए नाम कीर्तन करना है। लेकिन तो ये शुरुआत में है, इसके बाद तो राग माग में प्रवेश करना है, रघुनुग भक्ति में। तो मतलब ये रागात्मिक जन जो कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार उनके भाव देख के ये अपने जीवन में अपनाना है और इसका श्रवण करना है, तब समझ सकते हैं उनके भाव कैसा है, अनुभव कर सकता है। और ऐसे करते हुए नाम कीर्तन करना है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी रघुनाथ दास गोस्वामी उनको बताया था, अमानी नाम आनना कृष्ण नाम सदा लभे ब्रजे, राधा कृष्ण सेवा मन से करीबे। नाम कीर्तन तो करना है सड़क के शरीर में, लेकिन इसके बाद जब आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है, समझ सकता है मैं शरीर नहीं हूँ अभी तो आत्मा हूँ, तो उस अवस्था पे प्रयास करने भगवान के सुंदर रूप गुण लीला के श्रवण करना है और भाव से प्रेम से मन से कृष्ण की सेवा करना है। अमानी ना मानना कृष्ण नाम सरबले ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मन से करीबे। तो ऐसे करते हुए जब भाव से नाम कीर्तन करता है रागात्मिक जन के भाव लेकर जब रघुनुग भक्ति में प्रवेश कर, इसके बाद भाव भक्ति में प्रवेश कर सकता है, तब भगवान के स्वरूप अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है। और इसके बाद शरीर छोड़ने के बाद तो ब्रज में प्रवेश कर सकता है, लीला में प्रवेश कर सकता है। शुरुआत में तो लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है, पहले उनके स्मरण करना है लीला के। जब प्रकट हो जाता है लीला तब इसमें तो अनुभव कर सकता है कि हम इसमें हमारी एक बाग है, तो लेकिन शरीर छोड़ने के बाद लीला में प्रवेश कर सकता है। जब सिद्ध वस्त्र पर पहुंचता है भगवान का स्मरण कर सकता है, कभी कभी साक्षात दर्शन मिल सकता है भगवान के रूप गुण और लीलाएं, लेकिन लीला में नहीं प्रवेश कर सकता है। शरीर छोड़ने के बाद लीला में प्रवेश कर सकता है, तब फिर से जन्म लेना जरूरत नहीं है, ये उत्तम अवस्था है। तो हमको देखना है कि हम जल्दी से जल्दी आगे जा सकता है, और इसके लिए हमेशा भक्त के संग में रहना है, रोज रोज भगवत श्रवण करना है और ठाकुर जी की सेवा करना है। और ये भी देखना है कि जो आगे है, विशेष करके जो ब्रज के भक्त है, जो रसिक वैष्णव है, भावुक वैष्णवों के संग में रहना है, तब उस अवस्था पर पहुंच सकता है और सिद्ध अवस्था पर पहुंच सकता है। और ये हमारे वास्तव में परम गति है, लक्ष्य है कि उत्तम अवस्था पर पहुंचना है। लेकिन हमको देखना है कि हम कहाँ पर है, अगर कनिष्ठ के अवस्था पर, हमको देखना है कि हम मध्यम अवस्था पर पहुंच सकता है, कनिष्ठ अवस्था से उत्तम अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। तो कनिष्ठ के अवस्था से मध्यम अवस्था पर पहुंचना है, इसके बाद वहां से उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। और ये भी तो सीखना है कि कनिष्ठ अधिकारी की क्या है, मध्यम अधिकारी क्या है। तो इसलिए प्रतिदिन भगवत श्रवण करना है, तब अच्छा तरह से नाम कीर्तन कर सकता है, तब उत्तम अवस्था पर सिद्ध अवस्था पर पहुंच सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवताम की, नाम प्रभु की, श्री प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, गौ प्रेमनंदे हरे हरे बोल।